पिछली नशिस्त में हमने इमाम जौज़ी के हालात ज़िंदगी पढ़े थे और उनमें से उनकी शख्सियत के कुछ जो रुख थे उनको देखा था। पूरा हफ्ता ही डिफरेंट जगहों पे क्लासेस में जाती आती रहती हूँ, तो शायद ही कोई दिन खाली हो कि मैंने कोई बात इब्ने जौज़ी की शेयर ना की हो, इस सोच के साथ कि वो क्या थे और आज हम क्या। आप देखे कि ये लोगों की जो एक कॉमन खूबी थी ना, वो ये थी कि ये वक्त की बड़ी कदर करते थे। किताब में अगर आप तरतीब के साथ खोल के देख लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में इनकी लाइफ हिस्ट्री इनकी मौत तक देख ली थी, फिर इसके बाद अगर अगला टॉपिक आप बुक में देखें पेज 19 के ऊपर, तो ये इनके उस्तादों के बारे में, यानी इनको कौन कौन से उस्ताद मिले, तो इसमें से चंद छोटे दो चार जुमले बुलेट की तरह बता के तो आगे चलती हूँ और आप खुद बाद में इस हिस्से को पढ़िएगा। आप देखिए कि जब आप किसी उस्ताद के साथ किताब पढ़ते हैं ना, तो ये किताब पढ़ने का तरीका भी सीख रहे होते हैं। एक है अलिफ से ये तक सारा पढ़ छोड़ा, ए टू जी पढ़ा, अंदर कोई नहीं गया। नहीं, कुछ चीजें अहमियत की हामिल होती है, उसको ज्यादा गौर से पढ़ें, टाइम दें, उस पर गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें। कुछ के सिर्फ पॉइंट्स भी काफी होते हैं। तो इनके उस्तादों के बारे में चंद जुमले नोट कर लीजिए। खुद अपने उस्तादों के बारे में जो किताब लिखते हैं उसमें 89 उस्तादों का तज़किरा करते हैं, यानी इनके एक कम 90 उस्तादों का जिक्र एक किताब में, और यकीनन इसके अलावा और भी होंगे। हमारे कितने उस्ताद हैं और हम कितनों के तकाजे पूरे कर पाते हैं, और कितनों के बारे में हमारे दिल में ये आजजी और मोहब्बत आती है कि ये नेमत है हमारे लिए। फीस जमाना दुनिया की बात कर रही हूँ, सोचते हैं ये फालतू है, इन्होंने करना और क्या। जैसे मिस्त्री अपने काम पे लगा हुआ, मजदूर अपने काम पे लगा है, कुक लगा, इन्होंने तो पढ़ाना ही है। रियली बात लोग यही सोचते हैं, मुझसे कोई नहीं कहता, जाहरी इज्जत भी बड़ी करता है, रिस्पेक्ट करता है, लेकिन आपको अगर किसी की जरूरत ही नहीं, उसकी अहमियत ही नहीं पता, तो फिर आपको खैर उतनी ही मिलनी है जितनी आपने लेनी है। इन्होंने पूरी किताब लिखी और कहते हैं कि इस किताब को पढ़ के अंदाजा होता है कि अपने दौर के बेहतरीन और उलमाए आमिलीन का इंतखाब करते थे, यानी जो सबसे अच्छे थे। हम कहते हैं ढीला उस्ताद ले लो ताकि खुद भी ढीले रहे, पूछे तो ना कितना मजा ढीले ढाले रहे। जब हम दूसरों को बताने वाले ढीले होंगे तो मुझे बताइए कि दूसरों को क्या देंगे। मैं तो बहुत खौफ ज्यादा हो जाती हूँ उस टेबल को देखकर जो खुद ढीला। आप उस चूल्हे पे हंडिया रखेंगे जो चूल्हा खुद ही कांप रहा हो, नहीं रख सकते। तो याद रखिए, जो दीन की तरफ बुला रहे होते हैं ना, वो उस्ताद कह लें आप उनका कोई भी नाम रख लें, वो बहुत अहम होते हैं। बेहतरीन का इंतखाब कीजिए, और मैंने अपने ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, तजुर्बे और मुशाहदे से देख लीजिए, दुनिया भर में जहां भी क्लासे शुरू की हैं, वही क्लास पनपी, वही फली और वही फूली जिसमें हमारे अंसारुल्ला एडमिन वो जमे रहे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, उन्होंने अपनी कमिटमेंट नहीं छोड़नी, वो हालात के गुलाम नहीं बने, वो मजबूरियों की नजर नहीं हुए, वो छोटी छोटी बात को उजर बना के बैठेंगे। स्टूडेंट्स तो बच्चे होते हैं, वो कहेंगे हमने अपने उस्तादों को भी देखा, हमने अपने इंचार्जेस को भी देखा, हमने एडमिन्स को देखा है, वो भी कभी आते थे कभी जाते थे, कभी उठ जाते थे कभी ये करते थे, मियार ही बदल दिया। देखिए ना, तराजू है, आपने उसमें 10 किलो का बाट रखा, तो 10 किलो में 10 किलो ही डलेगा तो फिर ही पूरा होगा। तो आप 10 किलो लिखे लेकिन बाट 2 किलो का हो तो मियार ही छोटा हो गया, बर्तन ही छोटा। तो इसलिए हमेशा इसमें अपने लिए नोट करें, बेहतरीन सख्त मुश्किल उस्ताद को चूज करें, क्योंकि वो आपको ट्रिम करेगा और खुद भी ऐसे ही बने। ऐसा कोऑर्डिनेटर मैं देख रही होती हूँ, जान पे बनी होती है, एक फिगर मिस होता है, किसी की रोल कॉल नहीं, किसी का एक टेस्ट नहीं, वो ऐसे उसके पीछे फिर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के, जी ये आपकी कमी है, ये ठीक है, मैं देखती हूँ इनको, पता नहीं ये भी पता है कि नहीं, घर में आटा है खत्म हुआ है कि नहीं, चावल है कि नहीं, ये इनके स्टूडेंट्स के नंबरों पे, इनकी रोल कॉलों पे, इनके आने पे, इनके जाने पे परेशान है, इनको कहाँ याद रहना है कि घर में क्या मसला चल रहा है। और यही चीजें याद रखे फिर हमें पुख्ता करती हैं। तो इसमें हर एक अपने लिए अमल ले, मैं भी लूं, सबसे पहले तो मुझे ही लेना चाहिए कि इस काम की अहमियत को समझे, बेहतरीन बने, जो काम कर रहे हैं उसके अंदर इतना शरह सदर अकल इस्तेमाल करे बंदा। मैं सोचती हूँ दीन की तरफ बुलाने वाला सबसे अक्लमंद होता है, सबसे ज्यादा उसको पता होता है कि मेरा क्या अमल किस वक्त किस तरह का होगा। फिर इसी तरह से इन्होंने हदीस का इल्म भी लिया, और कहते हैं हदीस के मामले में साहिब फहम को तरजीह देते थे। एक होता हदीस पढ़ी, इन्ना मल आमालु बिन्नियात, हदीस है, अब इसका फहम क्या है अपने मामलों में परखिए, नियत कहाँ सीधी है कहाँ टेढ़ी है। उस हदीस के अंदर से जो एक नुक्ता अखज करने वाला है, ये वो साथ चूज करते थे जो फहम और इदराक के एतबार से बहुत ज्यादा हो। फिर इसी तरह से आगे अगर आप देखें तो अगले पेज पे उस्तादों के नाम है कुछ, आपके लिए तो ऐसे ही होगा जैसे शायद कोई गुमनाम हस्ती है। ये आपका होमवर्क है, आपने पेज 20 के उस्तादा के अस्माए ग्रामी का पेज 1, फिर अगला पेज है मशहूर तलामिजा। तलामिजा कौन होते हैं? शागिर्द, तलमीज की जमा। इब्ने जोजी ने जैसे उस सातिजा का इंतखाब किया आला तरह का, इस तरह इन्होंने अपने लिए जो शागिर्द चूज किए उनको भी बहुत अच्छा चूज किया। याद रखिए, दीन के काम में क्वालिटी आती ही इस बात से है कि आप चूज किसको करते हैं। मुझे कल कोई सुना रहा था, कहीं की भी बात होगी, कहने लगी कि हम क्लास शुरू करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग आए ना आए। किसी मस्जिद में पूछा उन्होंने कि हमें जगह चाहिए, घरों में औरतें कंफर्टेबल नहीं होती, तो आप आ जाए। तो हमें तो उन्होंने मसलक का नाम देकर पीछे कर दिया। कहती कि एक हफ्ता गुजरा तो मुझे उसी मस्जिद की किसी अपने साथी की तरफ से इनविटेशन आई कि मस्जिद वाले भी क्लास शुरू कर रहे हैं। मुझे जो जुमला उस स्टूडेंट का कल सुना और मैं वाकई हैरान रह गई। कहने की उस्ताजा, आप कहती हैं जगह मस्जिदों में ढूंढे, जहां हम जाते हैं वहां जगह नहीं मिलती, पर ये मैं आपको बताऊं वहां क्लासें शुरू हो जाती हैं। मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, चलो क्लासें तो शुरू हों। कहती नहीं, ये खुशी की बात नहीं, क्यों? अपना तजुर्बा सुना रही थी 1-2 साल पीछे का, कि क्लास हमने शुरू करनी थी और उसमें मस्जिद वालों से पूछा, उन्होंने अपनी मजबूरियां बता दी जो भी होंगी, लेकिन अंदर वजह ये थी कि वो हमें देना नहीं चाह रहे। कुछ दिन गुजरे तो इनको एक मैसेज किसी जगह से आया कि इस मस्जिद में भी जब खवातीन की क्लासेस शुरू हो रही, क्योंकि फिर पब्लिक तंग करती है कि हम अपनी बीवियों को कहाँ भेजो। कहते नहीं जी, हम भी करते हैं। कहती खैर, मैंने सोचा दीन ही सीखना, ये तो करीब है, चले दूर नहीं जाती तो मैं जाती हूँ। और वो कहती मैं वहां गई, नीयत बहुत अच्छी होगी, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, बट वो सिस्टर जो वहां एज अ टीचर बैठी थी कहने लगी मुझे कोई बात ही नहीं उसमें समझ आई ना। यानी ये मुतासिर नहीं हुई या इनको फायदा नहीं हुआ, असल में उस मस्जिद के किसी ब्रदर की बीवी थी। ब्रदर कहने लगे अगर उनके हस्बैंड के क्लास शुरू करते तो वाकई वो बड़ी अच्छी होती, क्योंकि वो पढ़ने पढ़ाने में काफी अच्छे हैं, लेकिन उनकी मिसेस मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकी, मेरा अगली दफा जाने को दिल नहीं किया। फिर क्या हुआ? कहती 2-3 वीक वो क्लास चली, अब कोई नहीं। वो सिर्फ एक हमारी इजाजत तलब करने का रिएक्शन था, कोशिश की, चूके अब बंदा ही नहीं था ठीक पास, तैयारी नहीं थी, इंतजाम नहीं था, कोई कोर्स या क्लासें ऐसे थोड़ी शुरू होती हैं, इसके लिए खून जलाना पड़ता है। कहती खत्म हो गई। तो क्या अच्छा था अगर वो वहां दीन की क्लास कुछ उन सिस्टर्स को करने दें जिनके पास कुछ तजुर्बा, कुछ मुशाहिदा, कुछ है, तो फायदा ही होता ना। लेकिन इस चीज ने मार दिया। अब आप देखिए कि आपने संडे को आना है कहीं भी क्लास में, आप कहते हैं इधर के रूल बड़े सख्त हैं, ये बहुत टाइम पे बुलाते हैं, ये जाने ही नहीं देते बीच में, ये फोन नहीं खोलने देते, ये बीच में बच्चों को नहीं खेलने पीने देते, और ये सबक भी सुनते हैं, तो क्या मुश्किल मैं अपनी जान को क्यों डालूं, पहले ही पूरा हफ्ता बड़ी मुश्किलें हैं। तो हम जहाँ कोई साथ ही कोई गली कूचे में देखते हैं कोई है, आइए जी और बैठिए जी और पढ़िए जी और सुनिए जी, जब दिल चाहे वहां चले जाते हैं, वक्त ही पूरा होना है। अब हम मतलब खाना पूरी तो हो गई, क्लास की क्लास, दिल का गिल्ट भी दूर हो गया, मिला कैंड पे। और आपको भी तभी मिलेगा जब आप सारे रूल सीखेंगे, ये भी याद रखें। ये आप लोगों को तो भी खुद भी नहीं अंदाजा कि अल्लाह ने आपसे काम क्या लेना है, और अगर ढीलम ढाले आधे की आधे तीतर आधे बटे, अल्लाह कोई नहीं अपने दीन का काम लेता। तो ये इब्ने जोजी की मैंने पर्सनैलिटी को पढ़ा है, ये जब भी चूज करते थे ना तो बेहतरीन चीज, मुश्किल उस्ताद लेते थे, और शागिर्दों में से भी जो शागिर्द इनके थे कहते कि इनके शागिर्द वक्त के इमाम बने। उस्ताद सख्त था ना, जिसको एक अच्छे उस्ताद के हाथ लग जाते हैं ना वो फिर कुछ ना कुछ करता है। और कहते हैं कि इनके लिखने पढ़ने में, इनके इखलास, इनकी लिल्लाहियत में, इनके शागिर्द इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते गए। और आगे देखिए कि पूरी लिस्ट है इनके शागिर्दों की, और कौन क्या क्या उलूम दिए लिए, इनकी किताबों के नाम आप पढ़िएगा घर में जाकर, तो आपको इंशाल्लाह शौक पैदा होगा कि हमने भी ऐसे ही शागिर्द बनना है। फिर उसके बाद पेज 22 पे इनकी कुछ किताबों का तस्करा है, तसानीफ और तालीफ। तसानीफ और तालीफ में क्या फर्क है? एक होती है तसनीफ और एक होती है तालीफ। तसनीफ का लफ्ज सनफा से है, खुद लिखना, और तालीफ कहती है दूसरी चीजों को जोड़ना, अल्लाफ युअल्लिफ, यानी मुख्तलिफ हदीसों को जमा किया, जैसे तफहीम सुन्ना सीरीज हम पढ़ते हैं, ये क्या है? तालीफ है। उस राइटर ने मुख्तलिफ हदीसें जमा की हैं, किताबुल हज के नाम पे, किताबुल ज़कात नाम पे, आप देखते हैं उस किताब में उनका अपना बहुत कम होता है, बात समझ गए? तो हदीसों के मजमुए को जमा करना, कुछ चीजों को करना, तो क्या कह गए, इस पे खूबसूरत जुमला लिखा हुआ है, कि वो जिस्म और रूह के एतबार से तो हमसे जुदा हो गए, मगर इनकी यादें, इनकी अजीम मेहनत के समरात तारीख के सफात पर जिंदा और जावेद हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा, जोहला यानी जाहिल, इग्नोरेंट, जिनको इल्म की कोई कदर ही नहीं, जिनका सिर्फ एक ही गम है खाना पीना बतन फर्ज, या जिनको सिर्फ दुनियादारी का ही गम है, कहते हैं कि जोहला जिंदा होकर भी मुर्दे हैं और उलमा मरने के बाद भी जिंदा है। आज भी लोग इनकी किताबें देखकर, इनकी तसानीफ को देखकर हैरान है। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह का नाम आपने सुना होगा, अपनी एक किताब में अल अजूबतुल मिस्रिया में कहते हैं, इनका नाम लेकर कहते हैं कि मुफ्ती और साहिब तसानीफ कसीरा थे, कई फनून में आपकी तसानीफ व तालीफ है, मैंने इनको गिना तो हजार से ज्यादा थी। यानी इब्ने जोजी की लिखी हुई किताबों को इमाम इब्ने तैमिया जिस नंबर तक गिन सके वो 1,000 थी। हाफिज ज़ाहबी हैं, इमाम हाफिज ज़ाहबी कहते हैं, मेरे इल्म के मुताबिक इब्ने जोजी के बराबर किसी आलिम ने किताबें नहीं छोड़ी, यानी लिखा इतना। और अलबिदाया नहाया किसने लिखी है आपको पता, इमाम इब्ने कसीर ने। वो इनके बारे में कहते हैं कि वो उलूम में मुनफरिद थे, यानी यूनिक थे, उन जैसा कुछ जगह मिला नहीं, कई उलूम पर इनको दस्तरस थी, मसलन इसके एक्सपर्ट थे। इनकी तसानीफ 300 से जायद हैं, खुद अपने हाथ से 200 से जायद जिल्दें लिखी, हर इल्म में वसी महारत, बल्कि महारत तामा, तामा किसको कहते हैं, तमाम मुकम्मल कंप्लीट, महारत तामा रखते थे, यानी इल्म तफसीर हदीस फिक तारीख हिसाब इल्म नजूम तिब लुगत सर्फ व नहव, इन तमाम उलूम में इनकी कई तसानीफ हैं जो यहाँ हम बयान नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि ये तारीफें ऐसे तो नहीं होती ना। फिर आगे आप पढ़ेंगे तो इनकी आपको कुछ किताबें मिलेंगी। जो चीज़ इस वक्त पढ़ने के काबिल आपके मेरे लिए है वो है 23 पेज पे इब्ने जोजी के यहाँ वक्त की कदरों कीमत। और इसको क्या सोच के पढ़ना है, क्या हम भी इस वक्त को ऐसे ही लेते हैं? मैं पढ़ती हूँ, मेरे साथ साथ नजर दौड़ाते रहिए। इनकी सीरत के किसी गोशे को भी मुलाहिजा कीजिए कि इनके यहाँ वक्त की क्या अहमियत थी, वक्त को किस तरह बचाते, मेहमानों की आमद या बेकारो बेमशगला अफराद के आने के वक्त आपका तरीक़ेकार क्या रहा। अपनी मरूफ किताब सईदुल खातिर की जिल्द अव्वल और सफ़ा 46 46 और 201 और जिल्द दोम के सफ़ा 318 और 19 और तीसरी जिल्द के सफ़ा 616 में फरमाते हैं, यानी अब इनके कोट्स हैं जो उस किताब में से लिए गए, इंसान को चाहिए कि अपने वक्त की कदरों कीमत को पहचाने, एक लम्हे को भी बेकार जाया ना करे, बल्कि हर लहजे को जरिया सवाब बनाए, अलबत्ता इसमें अपनी नीयत को फसाद से बचाए और हर कौलो अमल में नीयत को साफ और खालिस रखे, जैसा कि हदीस में आता है कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। सलफ सालहीन यानी पुराने लोग, हमारे उलमाए कराम, हर लहजे की हिफाजत करते, फजूल गोई से बचाते। चुनाचे मशहूर ताबई आमिर बिन अब्द कैस जो आबिद और जाहिद थे, उनसे किसी ने कहा मुझसे बात कीजिए, तो फरमाया सूरज को रोको। क्या मतलब कि तुमसे बात करने में जो मेरा वक्त लग जाएगा वो सूरज से को रुक जाए ताकि मैं उस वक्त को बाद में इस्तेमाल कर सकूं। ये लिखते हैं, मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कि वक्त को अजीब अंदाज से बर्बाद करते हैं, रात अगर लंबी हो जाए तो फजूल गोई या बेफायदा किस्से कहानियों और नावलों को पढ़ने में वक्त सर्फ करते हैं, रात को ता हो यानी रात के अंदर अगर अंधेरा हो तो रात को नींद में और दिन को तफरी गाहों और बाजारों में जाया करते हैं। वक्त जाया करने वालों की मिसाल इन लोगों की सी है जो एक कश्ती में सवार महवे गुफ्तगु हो और कश्ती इनको अनजान मुकाम की तरफ ले जा रही है, यानी रास्ता भूल के कश्ती कहीं भी पहुंच गई, वो बातें करते रहे, उन्होंने नोट ही नहीं किया किधर जा रही है, ये अपने मकसद से बेखबर है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वक्त की कदरों कीमत और अपने वजूद के मकसद का इदराक रखते हैं। उम्र बड़ा कीमती सरमाया है, हाथ से निकलने से पहले इससे काम लो और इसको कीमती बनाओ। सच बताएं आज हमारा क्या हाल है, और मुझे अब ज्यादा अंदाजा कहाँ से हो रहा है लोगों के सोने जागने का मैसेजेस से। ऐसी नजर पड़ती है अगले दिन, मैं कहती हूँ ये मैसेज कब है, रात को मैसेज देखो तो 12 बजे 1 बजे। सिस्टर्स इवन दीन की खिदमत करने वाले लोग भी 12 12 1 बजे तक जाग रहे हैं, कैसे जिंदगी में बरकत आएगी? और आप सुबह में जरा कहिए चलें कहीं चलते हैं, नहीं ये तो सोने का दिन है, ये तो आराम का दिन है, ये तो बच्चे सो रहे हैं, उठेंगे तो नाश्ता देना है। यानी आज हमारा मामूल बदल गया है। बेकारों की सोहबत से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ कि मेरे साथ भी आम वक्त ज़ाया करने वालों की तरह मामला करने की कोशिश करते हैं और इसको ज़ियारत या खिदमत का नाम देते हैं। बात समझ रहे? यानी आलिम थे ना, तो लोग आते थे, कहते थे आपकी ज़ियारत के लिए आए या आपकी खिदमत करना चाहते हैं और पास बैठने का मुतालबा करते हैं और बैठ कर बेमकसद बातों में लग जाते हैं। दरमियान में गीबत भी शुरू हो जाती है। ये हमारे ज़माने के अक्सर लोगों का तरीका है, खसूसन आम खुशियों और ईदों के मौके पर। बात सच है? यानी एक दीनदार का वक्त किस तरह लोग ले लेते हैं। आते किसी मोहब्बत में, नीयत भी अच्छी होती होगी, पर उसको एहसास ही नहीं हो रहा होता कि इसका वक्त किस तरह और लगना था, लेकिन अब इसको हमने तो सता दिया। अब देखे ना कि मोहब्बत में वो क्या कहे, जाओ उठ जाओ या ये गीबत ना करो, मेहमान की एक इज्जत होती है। तो ये कहते हैं कि मुझे ये चीज पसंद ही नहीं थी कि लोग मेरा इस तरह का बेकार वक्त लें। अब इसमें ये नहीं मतलब कि बिल्कुल ना कोई उससे बात करे, यानी यहाँ वो क्या लिख रहे हैं, बेमकसद बातों में। इल्मी बातें हो रही हैं, बैठिए बात कीजिए, कोई प्लानिंग हो रही है बात कीजिए, कोई मशवरा करना है कीजिए, कोई दुख दर्द करना है कीजिए, लेकिन बेतुकी हंकनी, ये बिल्कुल एक मोमिन को तो बिल्कुल भी ये सूट नहीं करता। एक दूसरे के पास जाते हैं सिर्फ मुबारकबाद देने और सलाम करने पर इक्तफा नहीं करते। सोचे हाँ, आप जब जाते हैं किसी को हज की मुबारक देने या आप किसी की मंगनी शादी की मुबारक, कहते हैं इतना ही नहीं करते बल्कि उसके साथ ऐसी गुफ्तगू भी छेड़ देते हैं जिससे वक्त बर्बाद होता है। हमारे यहाँ कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई किसी के घर चला जाए वीकेंड पे और 2 घंटे से पहले आए, बल्कि खाने का वक्त है तो खाना, चाय, फिर लाइची, सुपारी, पान, मीठा, चले अब रात का भी खा के ही जाइए। सिर्फ एक मेहमान कई दफा हमारा पूरा वीकेंड ले जाता है। और अगर कोई जरा सा नपा तुला बात करे, कहते हैं इनमें मोहब्बत ही नहीं, शिरीनी नहीं। हम गए थे जिनको खुशी नहीं हुई, हमने बुलाया ही आते ही नहीं है, आए भी थे तो कहा था बता दें कब आऊं जो बिल्कुल आखिरी बीच का वक्त हो उसमें आ जाऊं। देखें जी, इनको तो कहा था 6 बजे तो आए 8 बजे। भाई 6 से 8 के बीच में आपने बेकार बातें करनी है, खाना आपने खिलाना है, 8 बजे खाना देना है, तो 6 से 8 आकर खाने का इंतजार क्यों करे? याद रखिये, ये इज्तमाही प्रॉब्लम्स आज हमारी माशरे के। जब मैंने देखा कि वक्त कीमती तरीन सरमाया, इसको नेकी में सर्फ करना फर्ज है, तो इसको जाया करने को नागवार समझा और लोगों के मस्कुरा तरीके से पहलू तही की, यानी जो जिक्र हो चुके ऊपर तरीका, मैं ऐसा नहीं करता था बल्कि इनके साथ बैन बैन रहा। बैन बैन क्या होता है बीच में? अब देखिए, आप बुक पढ़ रहे हैं ना, आपको उर्दू आती है, लेकिन अब मुझे पता है कि इसको पढ़ने में कई गलतियां करेंगे। हो सकता है किसी को बैन बैन का मतलब ही ना, कोई बीन बीन कह दे, बैन बैन कह दे। तो जब पढ़े हाथ में कच्ची पेंसिल लेकर मेरे पढ़ने के साथ आप अरब लगा लिया करें जिस लफ्ज पे आपको डाउट है। और स्टूडेंट के हाथ में पेंसिल अच्छी लगती है, सीने पे हाथ बांध के अगर वो बैठा हो तो वो स्टूडेंट नहीं लगता। कागज, कलम और निगाहें किताब के ऊपर होनी चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं क्योंकि मुकम्मल इनकता भी मुमकिन नहीं। इनकता क्या है? मुनकते, कट ऑफ, कत तल्लु की बायकॉट करना जी। हम शादियों में नहीं जाएंगे, हम दावतों में नहीं जाएंगे, हम फैमिली गैदरिंग्स में नहीं जाएंगे, कहते ये भी मुमकिन नहीं। तो मुकम्मल इनका साथ देना भी गलती से खाली ना था। तो मुलाकातों को कम से कम करने की कोशिश की। अगर मुलाकात नागुजीर होती, नागुजीर क्या लफ्ज है? कई लोग इसको नागुजीद पढ़ते हैं, पता है आपको? ना मैंने नहीं, गुजीर कहते हैं भागना, फारसी का मुहावरा ये, नागुजीर जिससे आप भाग नहीं सकते, मुराद है कि ये लाजमी है। तो बहसो कलाम में कमी की कोशिश करके वक्त बचाने की तदबीर की, फिर ऐसा काम ढूंढ निकाला जो बातचीत के दरमियान भी चलता रहा। देखें जरा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं जब लोगों के बुलाने पे लंबी लंबी महफिलों में मैं नहीं बैठ सकता था और पूरा छोड़ नहीं सकता था, तो पहली बात तो मैं ऐसी बहस ही ना छेड़ता जिससे बात लंबी हो जाए। आप देखिए ना, किलो काल कैसे होती है, एक बात यहां से शुरू करते हैं, वहां पहुंचने तक पता नहीं वो बात का बतंगड़ बन चुका होता। ऐसी ओल फोल, कभी सियासतदान की बात है, कभी बाबडा की बात है, कभी बिजली नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी ठंड बड़ी आ गई, किसी अखबार की खबर को डिस्कस शुरू हो गया। आपको एंड ऑफ द डे क्या मिला? तो क्या करते थे? कहते थे बात ही नहीं करता था। और अगर किसी की बात सुन रहा हूं तो मैं क्या करता, कोई साथ काम ले जाता था। ये बड़ा अहम नुकता है आपके मेरे लिए भी टाइम मैनेजमेंट के सिलसिले में। क्या करता? मसलन ये निकाला कि किसी की आमद के वो कागज काट कर लिखने के लिए दुरुस्त करना और कलम तराश कर सही करना, और वो काम जो बातचीत करने के दरमियान भी अंजाम दिया जा सकता है करने लगा। कभी ऐसा भी होता है ना, पहले दौर में आप देखिए लोग सब्जी बना लें, साथ लहसुन का टोकरा पकड़ा, चले खवातीन ने तो यही करना था। अब आप देखिए किसी के साथ बैठे, जैसे मैं अपने ऊपर लेती हूँ कि अक्सर चीजें जब ऑनलाइन से करनी होती हैं तो मैं अंदाजा लगा लेती हूँ कि इस वक्त सिर्फ मैंने सुनना है और मैंने पूरी तवज्जो से सुनना है, तो अब मेरे हाथ तो खाली है ना, तो मैं साथ इसरी कर सकती हूँ, कोई हर्ज नहीं, मेरे पास फोन रखा है, मैं इस्त्री कर लूं। चले साथ, अगर मैंने कोई ऐसा काम करना है कि जिसमें सिर्फ मेरे हाथ लगते हैं, कोई सॉर्ट आउट कर लिए, कोई पेपर सॉर्ट कर लिए, कोई बुक डाउनलोड कर ली, तो मैं खुद भी इस तरह ही करती हूँ। क्योंकि अगर आप एक पूरा काम करें फिर दूसरा लें, तो फिर आपके उस एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम तो बचेगा भी नहीं। तो ये करना आप भी शुरू करें। आप जब दावतों में जाएं तो साथ ले जाएं कोई काम जो हाथ से करने वाला हो, ताकि अगले को भी एहसास हो कि आप वक्त को जाया नहीं करें। और वो काम करता जो बातचीत के दरमियान भी अंजाम दिया जा सकता, जिसके लिए फिक्र हजूर कल्ब की जरूरत नहीं होती। आप खुद जानते हैं ऐसे बहुत सारे काम है जो जहन की इन्वॉल्वमेंट के बगैर भी हो जाते हैं। मैंने मुशाहिदा किया है कि अक्सर लोग मकसद जिंदगी ही से गाफिल हैं, जिंदगी का मतलब ही नहीं समझते। इनमें से बास ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने माली फरावानी से नवाजा है, यानी अल्लाह सुबहान ताला ने उनको दुनिया की दौलत दी है, कमाई की इनको जरूरत नहीं। वो अपने औकात को बाजारों में आने जाने में जाया करते हैं, जिनकी वजह से मुनकरात में भी मुबतला होते हैं। इनमें से बास लोग फजूल खेलों में कीमती वक्त को बेदर्दी से जाया करते हैं, या फजूल किस्से कहानी और कीमतों के उतार चढ़ाव की बेफायदा बहस में जाया करते हैं। इससे मैंने ये समझा, वक्त की कदरों कीमत की पहचान की दौलत अल्लाह ने हर एक को अता नहीं फरमाई, ये तो महज अल्लाह की तौफीक है और बहुत ही कम लोग इसको गनीमत जानते हैं। वमा युलक्का इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये सूरह हामिम सजदा की आयत है, कि नहीं सिखाई जाती ये बात मगर बड़ी किस्मत वाले लोगों को। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उम्र के औकात की कदरों कीमत पहचानने और इसको गनीमत जानने की तौफीक मुरहमत फरमा दे, यानी हम पे रहम करते हुए हमें ये अता फरमा दे। सलफ सालेहीन तदीये वक्त, यानी वक्त के जाये करने, टाइम वेस्टिंग से गुरेज करते थे। हजरत फुजैल बिन अय्याज फरमाते हैं, मैं ऐसे लोगों से भी वाकिफ हूँ जो एक जुमे से दूसरे जुमे तक अपनी हर बात को शुमार करते हैं। हम एक दिन की नहीं कर पाते, यानी पूरा नजर में रखते थे क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। तो ये कड़ा मुहासबा बंदे को फिर सीधा कर देता है ना। किसी बुजुर्ग के पास लोग जाकर कहने लगे, शायद हमने आपकी मसरूफियत में खलल डाल दिया। फरमाने लगे, सच बता दूं, मैं कुरान करीम पढ़ रहा था, तुम्हारी वजह से छोड़ दिया। एक बुजुर्ग ने हजरत सिरी सकती के पास आकर देखा कि इनके पास एक जमात बैठी हुई है। कहने लगे, तुम बेकारों का फरोदगा बन गए हो, यानी बेकार लोगों की अमाजगा बन गए हो। फिर वो वहां से चले और वहां नहीं बैठे। अगर आने वाले के साथ नरमी बरती जाए तो वो नशिस को तवील करेगा, जिससे वक्त जाया होगा। गाइडलाइन मिल रही है आप लोगों को कैसे वक्त बचाना है। हजरत मारूफ करखी के पास लोग अगर देर तक बैठे रहते तो फरमाते, सूरज को चलाने वाला फरिश्ता इसको चलाने में कोताही नहीं करता। आप लोगों का कब तक उठने का इरादा है? क्या पता चला कि सूरज चला जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो आपने भी और बैठना है, या फिर दिन चला ही जाएगा तो जाएंगे। हजरत इमाम दाऊद ताई रोटी खाने के बजाय सफूफ फांकते और फरमाते, रोटी खाने और सफूफ फांकने में 50 आयात पढ़ने का फर्क है। सफूफ फांकना क्या होता है? जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू पानी में घोल के पीते थे, देखे पेट भर जाता है। अब हम पहले आटा गूंदें, फिर उसको नरम करें, फिर रोटी पकाएं, फिर खानी किसके साथ है, फिर गरम गरम रोटी चाहिए, फिर अब रोटी के बाद क्या है, फिर मीठा क्या है, फिर चाय क्या है। तो वो कहते हैं कि सफूफ फांकने रोटी खाने में 50 आयतों का फर्क है। नहीं समझे कि सफूफ फूक लूं खत्म कुरान पढ़ूंगा, उतने वक्त में जितने में सफूफ से रोटी बनती है 50 आयतें पढ़ी जाती हैं। उस्मान बिलाकलादी दायमो जिक्र बुजुर्ग थे। दायमो जिक्र कौन होता है? जो हमेशा ही जिक्र करता रहे। फरमाते, इफ्तार के वक्त रोटी खाते वक्त जिक्र छूटने से मुझे ऐसा लगता है जैसा कि मेरी रूह निकल रही है। बस बुजुर्ग अपने शागिर्दों से फरमाते, यहां से निकलने के बाद अलहदा अलहदा चलो कि शायद इस तरह कुरान पाक पढ़ते हुए चलो, इकट्ठे जाने की सूरत में गुफ्तगू में वक्त जाया करोगे। ये तो आपको कहा जा रहा है। अमूमन देखिए कि हम आते और जाते रस्तों में भी बातें कर रहे होते हैं, हालांकि वो वक्त इतना कीमती होता है, उसमें आप क्या कुछ तैयार कर पाते हैं। यकीन कीजिए वक्त इतना कीमती है कि इसमें एक भी लम्हा जाया ना किया जाए। आपका इरशादे गरामी है, मन काल सुबहानल्लाहिल अजीम व बिहम्दिही गरसत लहू बिहा नखल फिल जन्ना, जो जो सुबहानल्लाहिल अजीम व बिहम्दिही तक पढ़ ले तो जन्नत में इसके लिए खजूर का एक दरख्त लग जाता है। आप देखिए एक दरख्त लगता है तो हम बातें करके कितने दरख्त जाया करते हैं। जरा गौर कीजिए, इंसान गफलत में कितना अजीम शान सवाब कमाने का मौका गंवा देता है, गोया अय्याम जिंदगानी खेत है। कहा जाता है एक दाना बीज का बो डालोगे इसको हजार गुना करके तुम्हें अता करेंगे। किसी अकलमंद इंसान को ये जेब नहीं देता कि वो इस अजीम शान मनफियत यानी फायदा देने वाली चीज से गफलत बरते या काहली और सुस्ती से काम ले। वक्त को बचाने और कीमती बनाने में सबसे बड़ी मददगार चीज यकसुई और गोशा नशीनी, ये भी नोट करें। आज के दौर का ये बहुत बड़ा मसला है कि हम यकसू नहीं, फोकस्ड नहीं है। काम करने बैठे फोन आ गया, कभी वाइबर पे कॉल, कभी व्हाट्सएप पे कॉल, कभी बाहर कोई आ जाता है, कभी कोई मैसेज है, कहीं माली आ गया, कहीं बाहर आ गया, कोई कुछ हो गया। हम लोग बटे हुए लोग हैं। और गोशा नशीनी भी बहुत कहते हैं फायदा मंद होती है। लोगों से मेल मिलाप में कमी और कम खोरी भी है। कम खोरी क्या होती है? कम खाना। इसलिए कि बसियार खोरी, बसियार खोरी क्या होती है? ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग, लंबी नींद और रात को जाया करने का बायस है। जाहिर ज्यादा खाएंगे तो नींद ज्यादा आएगी। जो सलाफ की सीरत को देखे और आखिरत की जजा सजा पर यकीन करे, इसके सामने वाजे हो जाएगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच है। उलमा मुतकद्दमीन, मुतकद्दमीन कौन होते हैं? जो पहले गुजर चुके, पुराने उलमा। इनकी हिम्मतें बुलंद थी, इनकी सारी जिंदगी का निचोड़ और इनकी तसानीफ इस पर दाल हैं, यानी दलालत करती हैं। हाँ, अलबत्ता इनकी अक्सर तसनीफात मिट गईं, इसलिए कि बाद में आने वाले तलबा की हिम्मतें कमजोर हो गईं, इनकी तवील समझ से फायदा न उठा सके, मुख्तसिरात पर काने हो गए। यानी उनकी जो किताबें कई की जिल्दों की थी ना, फिर उसकी मुख्तसिर आ गई। जैसे आप देखिए मुख्तसिर बुखारी, मुख्तसिर मुस्लिम, हर चीज का मुख्तसिर लेते गए और जो उनकी एक डिटेल्ड चीजें थी वो छोड़ दी। फिर मामला सिर्फ दरसो तदरीस पर इक्तफा का ही रह गया, जिससे वो सारी तसानीफ जवाल पजीर हो गई। और बात सच है, बहुत कम लोग हैं जो डिटेल से कुरान तफसीर से करें। कहते हैं 4 साल, 3 साल, हाय इतना लंबा। चले कैसे 1 घंटे में बस हमें एक सारा पढ़ा दें तो वो मुख्तसर ही होगा ना। याद रखिए कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको 1 घंटा दरस सुनना भी बड़ा मुहाल है, कहाँ वो कुरान सुने। तो ये जवाल की अलामत है कि फिर इल्म जाया हो जाता है। इससे तलब इल्म में कमाल पैदा करने का वाहिद रास्ता उलमा साबिकीन की किताबों से वाकफियत और मुताले, क्योंकि इससे हिम्मतें बुलंद होंगी, दिल में आप यारी पैदा होगी, मेहनत का शौक पैदा होगा। मैंने अपने जमाने में पहले लोगों की तरह कोई बाहिम्मत और ऐसा साहिब वरा, वरा कहते हैं तकवा का आखिरी दर्जा, बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार बंदा, कोई ऐसा साहिब वरा शख्स नहीं पाया जिसकी इक्तदा की जाए। लिहाजा तुम पहले लोगों के हाल के मुलाहजे को जरूरी समझो, इनकी तसानीफ को हिरज़े जान बनाओ, यानी इनको पढ़ो, बल्कि इनका कसरत से मुतालिया करो। किसी शायर ने कहा, मेरे पास आओ कि मैं अपनी आंखों से घरों को देख लूं, हो सकता है कि मैं कानों से देख लूं। यानी वो देखने का काम भी कानों से करते थे, सुनने का ही नहीं। सिर्फ बहुत तवज्जो देने की तरफ इशारा है। ये कहते हैं कि मेरी हालत क्या है कि मैं किताबों के मुताले से कभी सैर नहीं हुआ, यानी मेरा दिल नहीं भरा। मुझे कोई ऐसी किताब मिल जाए जो पहले मेरी देखी भी ना हो तो मुझे ऐसे लगता है गोया बेशबहा खजाना मिल गया। मैंने मदरसा निजामिया के कुतुब खाने में किताबों की फहरिस्त देखी जो 6000 किताबों पर मुश्तमिल थी, जिसमें बड़े बड़े उलमा की थी, जिसमें इमाम अबू हनीफा और हमैदी की और मोहम्मद फतूह हंदलसी की, इसी तरह अब्दुल वहाब अपने नासिर अबू मोहम्मद की तसानीफ थी, और भी किताबें थी। कहते हैं मैंने सारी पढ़ डाली। अगर मैं ये कह दूं कि मैंने 20,000 किताबों का मुतालिया किया है तो मुबालगा ना होगा। इसके बाद भी मैं किताबों की तलाश में रहता हूँ, इन सारी किताबों को पढ़ने, इनकी बुलंद हिम्मती, हिफाजत दीन और इबादात और अजीबो गरीब उलूम को पढ़ने के बाद अपने जमाने के लोगों की हिम्मतों को अपने से पस्त और कमतर पाया है। देखिए आप और मैं ये क्यों पढ़ रहे हैं सारा? क्या हमें से मोटिवेशन मिल रहा? हम तो जल्दी से गुनाहों की बात करके फारिग हो, लेकिन वक्त जाया करना हमें गुनाह ही नहीं लगता, बेकार बातें हमें गुनाह ही नहीं लगती। तो ये सारा पढ़कर कम अज कम हमें क्या फील हो रहा है कि हम भी तो अपना जायजा लें, हमने कहाँ अपने आप को जाया किया। फिर इसी तरह से एक दो और इनके बारे में, जैसे हाफिज इब्ने रजब हैं, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, किताब है उनकी ज़ैल तबकातुल हनाबिला, तो उसमें ये इब्ने जौज़ी के लिए कहते हैं, कोई ऐसा फन नहीं जिसमें इनकी तसनीफ ना हो। इनकी तसनीफ के मुतालिक पूछा गया तो कहा 340 से जायद हैं, इनमें बाज किताबें 20-20 जिल्दों पर मुश्तमिल है। आज आप अपने नोट देखे कितने लिखे होंगे, बाज उस पर भी बहुत समझते हैं कि बहुत है, लेकिन ये इतनी छोटी जिंदगियों में इतना कुछ कैसे कर गए फोकस्ड से। इसी तरह अब्दुल लतीफ साहब इनके बारे में कहते कि इब्ने जोजी अपने वक्त में से एक सेकंड भी जाया नहीं करते थे। रोजाना चार रजिस्टर लिखते, चार कापियां रोज लिख देते थे। सालाना 50 से 60 किताबें तसनीफ फरमाते हैं। इनके पोते अबुल मुजफ्फर फरमाते हैं, मैंने अपने दादा जान को आखिरी उम्र में मिंबर पर फरमाते हुए सुना कि मैंने अपनी इन उंगलियों से 2000 किताबें लिखी हैं। उंगलियों से क्या, पेन कलम पकड़ना पड़ता था ना। आज टिक 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 करें, आप देखिए कैसे कंप्यूटर आपके लिए लिखता है। इसी तरह इब्नुल वर्दी इनके बारे में कहते हैं कि मैंने इब्ने जोजी के रजिस्टरों को इनकी उम्र के याम पर तकसीम किया तो रोजाना 9 रजिस्टर बने। इसी तरह एक और है अल-लुकमी, इनके बारे में कहते हैं इन कलमों के बुरादे को जमा किया गया जिनसे इब्ने जोजी ने हदीस लिखी तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जमा हुआ। उन्होंने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद गुसल के पानी को इन बुरादों से गर्म किया जाए, तो ऐसा ही किया गया। और ये बुरादे गुसल के पानी को गर्म करने के लिए ना सिर्फ काफी हुए बल्कि बच भी गए। शॉप करते ना पेंसिल, तो जो उसकी लकड़ी के छोटे छोटे सिरे होते हैं उसी में इनको फिर पानी गर्म करके गुसल दिया गया था। कदर थी ना, आज तो कदर ही नहीं है। मैं सोचती हूँ दीन तो एक साइड पे कर दे, वो तो हैं धजियां बखरी हुई दीन की, वो तो हमने अपनी मर्जी से इधर उधर के। जो कौम इल्म की कदर नहीं करेगी, किताब की कदर नहीं करेगी, वो दीन की कदर नहीं करेगी। आज क्यों इतनी ज्यादा सहूलतें मांगते हैं दीन में लोग? आज किसी से कोई बात करें, सूद हलाल करो, ये सही है, कुछ नहीं होता, लड़का लड़की है, मिलने शादी से पहले बैठ जाए, यानी मोटी मोटी बातें दो चार देखिए तो लोग क्यों उसके ऊपर अब जम गए हैं? इल्म से ताल्लुक टूटा हुआ है, वक्त की कदर नहीं, बेकार चीजों में पड़े हुए हैं। बहरहाल इनके बारे में एक आखिरी कोटेशन जो अल उस्ताद अब्दुल हमीद की है, मौलिफ आते इब्ने जौजी के नाम से इस किताब में लिखते हैं और इसको कहते हैं कि इराक की वजीर सकाफत वाल इरशाद ने 1385 में तबाह किया था, यानी आज से तकरीबन 10-11 साल पहले इसको प्रिंट करवाया था। इसमें इनकी 519 किताबें लिखी हैं, जिनमें बड़ी बड़ी किताबें 20 जिल्दों पर मुश्तमिल और छोटी किताबें भी कई सफहात पर मुश्तमिल थी। इसी के मुकदमे में इब्ने तैमिया के हवाले से लिखा है कि इब्ने तैमिया ने अजूबतुल मिस्रिया में लिखा कि इब्ने जोजी बहुत ज्यादा लिखने वाले थे और मुख्तलिफ उलूम में इनकी तसनीफ जिनकी तादाद 1000 से भी ऊपर बढ़ गई है। तो बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, कि अल्लाह हमें ऐसे लोगों का रास्ता दिखा जिन पे तेरे इनाम हुए। सच बताएं आज कब्र में ही है ना, खाए हुए खाने पिए हुए खाने सारा कुछ उनकी जिंदगी से निकल गया ना, साथ किया गया। आप अपने ऊपर लें, इसको अपने पे ले, मुझे तो किसी की और फिक्र नहीं है, मुझे आपकी फिक्र है, क्योंकि आपके नाम के साथ कुरान का नाम लग चुका है। वक्त जाया ना किया करें, बेकार मशगलों में जब हम बैठते हैं उससे दिल का नूर चला जाता है, तलब चली जाती है, रूहानियत चली जाती है, बात का असर खत्म हो जाता है। हर जगह हर महफिल में होना कोई लाजमी है क्या? हमारे बगैर कोई खुशी गम नहीं होता। और मैं कहती हूँ अब तो बाइकॉट करना ही पड़ेगा आपको भी, हर उस गंदी चीज का जहां से अल्लाह ने रोका, हर वो हुक्म जो आपने खुद अपनी आंखों से कुरान में पढ़ लिया, अब क्या आप उस पर बैठे रहेंगे? क्या आप झूठ के गवाह बनेंगे? फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह आपका दिल खुलेगा। फायदा हुआ हमें इसको पढ़ने का? क्या फायदा होगा कि हमने भी अपनी जिंदगी में वक्त की कदर करनी है, इल्म दोस्त बनना है, किताब के लिए वक्त निकालना है, फोकस्ड होना है और बेकार खाने पीनों में वक्त जाया नहीं करना। सब कुछ कीजिए हदों में रहकर, और जहां दूसरों से मिलने जाने आने की जरूरत पड़ती है तो साथ कुछ ऐसे काम जरूर रखने हैं कि जिससे अगले को भी एहसास हो। लेकिन अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो लोग बैठ के गीबते तो नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये तो बड़ी जल्दी में। तो आप देखिए सिर्फ एक आपकी वजह से खानदान की महफिलों का, दावतों शादियों का माहौल बदल सकता है। ठीक है, अभी तक जो हुई है ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके बारे में पूरी हुई।